शांति। बहुत प्यार से बोलेंगे ओम शांति। आज का विषय बहुत अच्छा है, डबल लॉक लगाने की विधि। इसकी क्या आवश्यकता है, डबल लॉक लगाने का भाव क्या है, डबल लॉक लगाने का भाव यही है कि माया हम आत्माओं पर अपना प्रभाव न डाले, माया के हम कभी भी अपने आप को अधीन न समझें, उसके अधीन न हो जाएं, चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे कर्म में। अब पहली बात इसमें ये है कि हम माया को क्या समझते हैं, माया किसे समझते हैं। मोटे रूप में तो आप सबको, बाबा के बच्चे हैं, नॉलेजफुल हैं, नए भी पुराने भी, जब भी माया शब्द आता है मुरली में या जब भी कभी माया शब्द आता है तो हमारा ध्यान चला जाता है पांच विकारों पर या उनके सूक्ष्म स्वरूप जो हैं। हम कह देते हैं किसी से भी क्लास से पूछो भाई माया का क्या मायना है, कहेंगे रावण। अच्छा भाई रावण किसे कहते हैं, पांच विकार या उसका सूक्ष्म स्वरूप, इसको हम कह देते हैं। अच्छा आम शब्द हम यूज करेंगे कि माया आ गई, कोई क्लास में देरी से पहुंचेगा, सुबह नहीं उठ सकेगा, कोई ऐसी किसी चीज के अधीन हो जाएगा उसका मनमानी कर्म, तो क्या कहेगा कि हम माया आ गई। जैसे ऐसे लगता है कोई माया दूसरी चीज है, वो आ गई। आ गई मैं ना, जैसे बाबा कहते हैं कि आना सिद्ध करता है कि मैं सर्वव्यापक नहीं हूं, मुरली में आता है ना, जब मुझे बुलाते हो बच्चे परमात्मा को भक्ति में बुलाते हैं तो बुलाना क्या सिद्ध करता है कि वो यहां नहीं है। अच्छा माया आ गई का क्या मैं ना, माया आ गई, मैं ना वो कहीं बैठी हुई थी, दूर बैठी हुई थी ना, कहां से आई है माया। माया आ गई, उसने हमें अपने अधीन कर लिया। अच्छा क्या भाई कोई पुलिस है, पुलिस आ गई है? कोई आर्मी का अटैक हो गया, इसलिए हम ऐसे समझे हुए हैं कि शायद माया अलग चीज है, हम अलग हैं, माया अलग है, ऐसे है ना, माया आ गई। अब बाबा ने जो समझ दी है उसकी हमें और गहराई में अगर हम जाते हैं, क्योंकि ज्ञान पहली स्टेज होती है, ज्ञान को सुनना, मुरली को सुनना या पढ़ना, इसको हम ज्ञान कहते हैं। दूसरी स्टेज होती है कि मुरली को याद रखना, स्मृति में मुरली सुनी। अच्छा सुनने के बाद जब मुरली पूरी हो जाए, कोई आपसे पूछे मुरली सुनी, मुरली सुनी कैसे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आज की मुरली कमाल की थी। अच्छा भाई एक दो पॉइंट सुनाओ, याद कुछ भी नहीं, देखिए वंडरफुल है कि नहीं, मुरली बहुत बढ़िया थी, पर मुरली की कोई बात आपको याद में है, याद में है तो उसका दिन भर उसका अंदर मनन चलेगा, उसका धारणा की बात तो अगली स्टेज है ना। इसलिए पढ़ना और सुनने के बाद की सेकंड स्टेज है स्मृति में रखना। आप देखो करके देखना, कोई एक दो पॉइंट। अभी आजकल अभी भी दादी जी सुना रहे थे ना, कहती वंडरफुल है मुरली। हम लोग जब सब पहले आए थे तो ऐसा थोड़ा होता था कि मुरली का हेडिंग, मुरली का प्रश्न उत्तर, फिर धारणा के लिए पॉइंट्स, फिर वरदान, फिर स्लोगन। तो दादी कह रही थी कमाल की मुरली, कमाल की। क्योंकि पहले हम जब लोग आए थे तो ऐसे थोड़ा होता था, सीधा मुरली शुरू हो जाती थी, याद प्यार बस। उसके बाद हमें खुद मेहनत करके उसमें से पॉइंट्स निकालनी होती थी। तो इसलिए मुरली को अंदर में, अभी तो बनी बनाई चीजें आपके पास रेडी हैं, धारणा की पॉइंट है, वरदान है, प्रश्न उत्तर है, कोई चीज आपको याद रहे। नेक्स्ट स्टेज ये है कि याद के बाद फिर उस पर आपका मनन चले, विचार चले। जैसे बाबा कहते हैं ज्ञान युक्त के बाद की स्टेज क्या है, ज्ञान युक्त, उसके बाद बाबा क्या कहता है, राज युक्त, उसके रहस्य को, गहराई को जानना, उसके बाद योग युक्त है, और उसके बाद युक्ति युक्त है। पहले ज्ञान युक्त है, फिर राज युक्त है, फिर योग युक्त है, और फिर युक्ति युक्त है। नंबर 12 है राज युक्त का मैंने क्या चीज है, कि हम गहराई में जाएं, मनन, जिसे बाबा मनन भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो मैं आपसे बात कर रहा था कि माया को भी अच्छी तरीके से आप समझना पड़ता है हमें। पहले माया पांच विकार है, माया रावण है, माया आ गई, ये तो ठीक है, पर माया माया क्या है, क्या है माया, कैसे आती है माया। तो अगर हम गहराई में जाते हैं तो वास्तव में हम आत्माएं हैं, शरीर के द्वारा कर्म कर रहे हैं, सतयुग से लेकर के पाठ बजाना शुरू कर दिया। सतयुग त्रेता में बाबा कहता अकर्म, वहां कोई विकारों के अधीन होकर के कर्म नहीं करते हम, इसलिए अकर्म की स्टेज रहती है। कर्मों का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता। जब द्वापर आता है तब आप अपने निज स्वरूप से विस्मृत होते हैं। जब बॉडी कॉन्शियस की स्टेज शुरू हो जाती है, जैसे बॉडी कॉन्शियस की स्टेज शुरू हो जाती है तो फिर ये विकार, इनका सहारा आत्मा लेती है। झूठ कौन बोलता है जिसमें सच बोलने की ताकत नहीं है, तो झूठ का सहारा लेता है ना, उसको पता है कि ये झूठ है फिर भी झूठ बोलता है। क्यों? क्योंकि समझता है इसके बिना काम नहीं चलेगा, झूठ से काम चल जाएगा। गुस्सा क्यों करता है, गुस्सा क्यों करता है, तो उसको विश्वास है कि मीठा बोलने से, प्यार से काम नहीं चलेगा, इसी गुस्सा आंख दिखाता है मेरा काम हो जाएगा। तो ये विकारों का आत्मा ने कब सहयोग लेना शुरू किया, विकारों के अधीन कब हुई, जब हमारी गुण और शक्तियां की स्टेज खत्म हो गई, कम होने लगी। हमारी नेचुरल जो स्टेज है गुण शक्तियों की, वो कम होने लगी द्वापर से, बॉडी कॉन्शियस इसे कहते हैं। तो ये विकारों के अधीन होकर के जो कर्म किए हैं वो संस्कार बनते चले गए, विकर्म, विकर्मों का खाता, इसे कहते हैं कि आत्मा में तीन चीजें हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। द्वापर से लेकर के हमारे संस्कार आत्माओं के विकारों के अधीन होकर के भी होने लगे मन, वचन, कर्म। अब वो अंदर है 84 जन्मों का पाठ, हर एक के अंदर जैसे जैसे जिसने जितना जितना विकारों के अधीन होकर के उससे मन, वचन, कर्म उसका चला, वो कहां पर है, कहां पर है, हर एक के अंदर है। जिसे पापों की गठड़ी भी लोग कहते हैं भक्ति में, बोझ बोझ भारीपन। भारीपन क्या चीज है? ये जो आत्मा के अंदर है, शरीर बदल जाता है, आत्मा तो अविनाशी है, फिर पुनर्जन्म लेके फिर ले, वो साथ ही है। हमारे जो बैलेंसेस है, हमारे जो कर्मों का लेखा जो का आत्मा ने किया है, वो कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता। वो अंदर है। अब जैसे जिसका वो खाता है, संस्कार क्या काम करता है? मन संकल्प शक्ति, बुद्धि निर्णय शक्ति, संस्कार क्या काम करता है? संस्कार संकल्पों को क्रिएट करता है। हमारे संकल्प जो हैं, संस्कार जो अंदर, जैसे संस्कार हैं वैसे उसको अंदर थॉट्स क्रिएट होते हैं, संकल्प आता है। आपने देखा होगा कई पानी से घबरा जाते हैं, कोई छोटी सी चीज से घबरा जाती है, डर लगता है अंदर में, ये क्या चीज है? किसी को कुछ नहीं होता, कुछ अंधेरे में चल जाते हैं, कुछ दोनों अकेले अकेले नहीं, ये क्या चीज है? भय, भय का संस्कार है, उसके आत्मा में भय का संस्कार है। कोई ऐसी चीजें घटी हुई है उसके जीवन के अंदर कई किसी जन्म में जो उसको भय लगता है, किसी को पानी से लगता है, किसी को किसी चीज से लगता है। वैसे ठीक ठाक है, किसी चीज में अंदर देखेंगे उनके अंदर विशेष कमी नजर आती है, विश्वास में कमी नजर आएगी किसी चीज में। तो ये जैसे जिसके संस्कार अंदर है, मेरा ही अकाउंट है, वो थॉट क्रिएट कर रहा है। वो जो थॉट क्रिएट कर रहा है वो तो गलत है ना, अंदर में चीज गलत है तो गलत थॉट क्रिएट करेगा ना, वो गलत थॉट क्रिएट करता है। हम कहते हैं माया आ गई, माया आ गई। अंदर क्या चीज है? अपने ही अंदर वो चीज है, मेरे अंदर, जिसके अंदर जिसके जितनी है। आप देखो यहां पर बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे अमृत वेले सुबह उठ जाओ, ये मेरा वो टाइम है आप बच्चों के लिए है, उसमें आप बच्चों को मैं वरदान देता हूं, पालना करता हूं। कितनी बातें बाबा ने कही अमृत वेले के लिए। फिर अमृत वेले उठ करके बैठना कैसे है वो भी बाबा ने बताया। सब कुछ समझ आया ना, हर एक को समझ आया, दूसरों को भी समझा सकते हम, मगर खुद प्रैक्टिकली में क्या होता है, ये क्या चीज है? आप देखो, समझ है मगर होता नहीं है। उठ के बैठते हैं, बाबा कहता है नेमी नाथ, उठ के बैठते हैं, बाबा ने उसका करके भी दिखाया, उठ के ऐसे ऐसे करेंगे। उनको पता भी है, अगर उससे पूछा जाए कि अमृत वेले कैसे बैठना चाहिए, वो बाप को बैठ के दिखाएंगे। आप उनसे पूछो अमृत वेले बैठना कैसे चाहिए, बैठते कैसे हो, ये क्या चीज है? आप देखो ये क्या चीज क्या है। उस आत्मा में ज्ञान को धारण करने की शक्ति नहीं है, समझ है, शक्ति नहीं है उसके अंदर। ये जो शक्ति है या नहीं है, ये क्या चीज है? ये संस्कार है, ये संस्कार, इसको समझना है। कोई आप देखेंगे जैसे ज्ञान सुनेंगे और बाबा की बात को सुनेंगे समझेंगे वैसे ही। कई ऐसे मैंने भाई बहनों को देखा है, जैसे उनको पता है कि अमृत वेले का महत्व क्या है और उसके बाद बैठना कैसे, वैसे मैंने कई विदेशी भाई बहनों को देखा, जैसे रेड लाइट होगी ना, अलर्ट हो, सीधे आंखें खोल, ये क्या चीज है? उनको पता है कि योग की विधि क्या है, कैसे बैठना चाहिए, विधि है उनको पता है, मालूम है कि योग में ऐसे ही बैठना होता है। उनके संस्कारों में क्या चीज है? कि हमें जो कार्य करना है विधि पूर्वक करना है, ये संस्कार में उनके है, अंदर संस्कार के अंदर है, इसलिए अंदर में वो बैठ जाते सीधे होके। और कईयों को आप देखो को समझ है, पर उनके संस्कार में क्या चीज है, जिसे बाबा कहता है अलबेलापन, ढीलापन। जैसे अगर उनसे पूछो कि आप बैठे कैसे थे, आप जानते तो बैठना कैसे है पर बैठे कैसे थे, कहेंगे नहीं पता नहीं क्या होता है, पता ही नहीं लगता, आंखें बंद हो जाती हैं, पता ही नहीं लगता, ऐसे ऐसे होने लग जाता है। कहते पता ही नहीं लगता है। देखो अरे भाई, आपकी मोटर है, आपकी गाड़ी है, आप इसको चलाओ ना ठीक ढंग से, सीधे होके बैठो। हम लोग जब आए थे शुरू शुरू में ज्ञान में चले, 60 साल पहले की बातें हैं, हमारी टीचर मनोहर दादी थी, जब हम ज्ञान में आए 58-59 में, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। हमें तो आंखें बंद करने की अलाउ ही नहीं, उन्होंने अलाउ ही नहीं करते थे ना। उसके बाद हमारी दादी चंद्रमणि थी, जो पंजाब जोन की चीफ थी और बाद में दादियों में से, उनके सामने कोई योग में नींद करेगा ना, किसी बहन को बुलाएगी, इधर आ, इसको उठा के बाहर ले जा, बाहर ले जा, ये क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, गलत वातावरण क्रिएट कर रहा है। उन्होंने क्लास में किसी को नींद करने दी नहीं, कर ही नहीं सकता कोई नींद। योग में बैठे बैठे कहेंगे आंखें खोल, आंखें खोल। तो ये उन्होंने अंदर ताकत से, उन्होंने ताकतवर पैदा किए। अब हमारी टीचर बहनें रहम दिल है, दयालु हैं। मैं कई दफा कहता हूं बहनों तुम्हारी क्लास में भाई नींद करते हैं। तो डबल लॉक में पहली बात जो बाबा ने मुरली में सुनाई है कि बच्चे याद और सेवा, ये डबल लॉक है। मगर याद और सेवा के भाव को समझना है पहले अच्छी तरह से। ये जो मैं आपसे शेयर कर रहा था, क्योंकि हमारे पास ग्रुप्स आते रहते हैं सोनीपत रिट्रीट सेंटर में, हर महीने 250-300 भाई बहने ग्रुप में आते रहते हैं, वीकेंड पर कभी 15 दिन में, तो मैं उनसे बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ एक एक से। 10 साल से 15 साल से ज्ञान में चलने वाले, नए भी पुराने भी, मैं जब सामने बैठता हूं, और अमृत वेले भी या किसी और टाइम भी, जब मैं देखता हूं कि ये विधि पूर्वक नहीं बैठ रहे हैं, लगन अच्छी है, विश्वास है, निश्चय है, लगन है, संकल्प है, खास आए हैं समय निकाल के, टाइम निकाल के, पैसा खर्च करके, अंदर मतलब इनके है, अंदर इच्छा शक्ति है, मगर इनको इनको अभ्यास नहीं है, गलत अभ्यास है। रादर मैं बल्कि ये कहूंगा कि गलत अभ्यास है। कितना टाइम लगता है हमें उनको ये कहने कि नींद अलग चीज है, योग अलग चीज है। काफी भाई बहने हैं जो नींद को ही योग समझते हैं, ये सच्चाई मैं आपको बताता हूं। करेंगे नींद और कहेंगे योग। अब देखिए योग, बताइए योग और नींद में फर्क नहीं है, तो उसमें भी रिलैक्सेशन मिलती है। इसलिए उनको अगर आप पूछेंगे अच्छा योग में बैठे कैसे लगा, कहते बड़ी शांति थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। योग में शांति भी है तो शक्ति भी है। योग तो लिंक है। जब हम आए थे नए नए तो वहां बोर्ड लगाया करते थे हम, राजयोग किसे कहते हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही राजयोग है। मिलन योग में ना जोड़, योग में ना मिलन। किसी से भी आप पूछो योग के बारे में, 15 मिनट आधा घंटा भाषण कर देंगे, आपको बताएंगे बिल्कुल योग किसे कहते हैं। दे नो इट, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। पर आप जब योग में बैठे थे तो क्या कर रहे थे, आप तो कहीं और मिलन बना रहे थे। कई दफा मैं किसी को पूछता हूं भाई आप योग में बैठे थे कहां गए थे, कहते कहां जाना था, वो मेरे से पूछते हैं, कहते जाना कहां है। देखिए आप इसका कहना ये कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, हमें यही पता नहीं कि योग में हमें हमारे थॉट्स से मन और बुद्धि का खेल है। संकल्प है और बुद्धि है, दोनों चीजें काम करती हैं। मन को हमें कहां ले जाना है, योग का मायना क्या है, मिलनम कैसे मनाए, कौन मिलन मनाएगा, शरीर तो हमारा यहां है। दादी भी कह रही, इतना कितना अच्छा गीत है कि जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा, दादी कितना रिपीट करती है कि योग को हम अंडरस्टैंड करें ना, योग को अंडरस्टैंड करें और अभ्यास करें, प्रैक्टिकल करें, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। थ्योरी में 100% है अपना, हमारे सबके थ्योरी में 100% है, प्रैक्टिकल हम खुद जैसे बैठते हैं तो हमें क्या होता है। बाबा कितनी दूर है यहां से, सूक्ष्म वतन या परमधाम यहां से कितनी दूर है, वन थॉट है, नथिंग, दूरी की बात ही नहीं है। आप यहां से आए हो, जहां से आए हुए, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने मकान में, अपने जहां आप रहते हो, अभी आपको कहा जाए कि अपने कमरे का चक्कर लगा के आओ जरा, कितनी देर आपको लगेगी। जैसे कहोगे मेरा कमरा, कमरा सामने आ जाता है, ऐसे कहोगे सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन सामने, मूल वतन, मूल वतन सामने आ जाता है। डिस्टेंस की बात नहीं है, दूरी की बात नहीं है, मगर कई ऐसे मैंने ये भी देखा है, कई शुरू में बड़ी अच्छे बैठते हैं, जब योग शुरू होगा ना आप देखो सामने बैठ करके सब ऐसे बैठे होंगे, ऐसे एकदम, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, आत्मा ज्योति बिंदु, फिर अरे क्या हुआ, दो तीन मिनट तक जैसे कि वो आत्मा ज्योति बिंदु, आत्मा ज्योति बिंदु, और फिर खत्म हो गया, फिर कहां चले गए। इसका मायना क्या चीज है, क्या चीज है अंदर में, कि हमारा योग कोई ये अभ्यास मंत्र जाप नहीं है, योग हमारा जाप नहीं है, मंत्र नहीं है, रटना नहीं है, अनुभूति है। योग में ना अनुभव, जैसे आपके सामने आपका आप बैठे हुए हैं, घर में आप बैठे हुए हैं, आपकी बहन या भाई आ गए, अच्छा आप क्या करोगे, जैसा आपकी बहन या भाई आएगा तो उसकी तरफ देख के मुस्कुराओगे कि नहीं मुस्कुराओगे, फिर क्या करोगे, बातचीत करना शुरू कर दोगे, फिर आपको कितना टाइम लगेगा पता लगेगा, आप बातचीत कर रहे हो ना, संबंध है ना, स्नेह और संबंध यहां पर है, वहां बातचीत शुरू हो जाती है, यहां पर हमारी बातचीत होती नहीं। हम बाबा से स्नेह से संबंध से बैठ करके बात है, बाबा से बात करो ना। बाबा ने कई बार मुरली में सिखाया, बाबा ने सिखाया, बच्चे कैसे याद करो, प्राप्तियों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, कैसे, बाबा आपने तो बड़ा मजा आ गया, बड़ा अच्छा लगा, बाबा मेरी जीवन बदल गई, अपना देखो मेरे अंदर कितना परिवर्तन हुआ, सब बाबा को सुनाओ, बाबा से बातचीत करो, जैसे आप बैठे हुए हैं बातचीत कर रहे हैं बाबा से, तो कितना टाइम लगा आपको पता ही नहीं लगेगा। जैसे कि संबंध से बैठो, कनेक्शन से बैठो, प्यार से बैठो, बातचीत करो बाबा के साथ, क्यों नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। और हम रोज सवेरे शाम कहते हैं मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा, और जो योग में बैठते तो बाबा कहां चला गया। देखो व्हाट इज दिस, आप ये अंदर महसूस करो कि व्हाट इज दिस, मैं बाबा से बातचीत नहीं कर सकता। एक बच्चा स्कूल से आता, छोटा बच्चा ना, दूसरी तीसरी वाला आके, मम्मी आ ये हुआ, मम्मी ये हुआ, वो कहती बस भी कर, नहीं और सुनाऊंगा, नहीं और सुनाऊंगा। उसको कितनी बातें होती है अपनी मां बाप से सुनाने के लिए, छोटे बच्चे को, हमारे पास कोई बातचीत नहीं है, सारा दिन कैसे बीता, आज कैसे रहा, आज मेरी स्थिति कैसे रही, आज मुझे क्या क्या थॉट्स आए। अरे बात मत पूछो, बाबा से बातचीत करो, क्यों नहीं करते, बाबा को सुनाओ, बाबा किसका है। मैंने किसी को पूछा, हमारे पास एक गांव की माताएं आई सोनीपत में, मैंने पूछा बाबा सुनता है, बाबा सुनता है, एक माता कहती सुनता नहीं, मेरा काम भी करता है। देखिए व्हाट इज दिस, ये है, देखिए ये नशा अंदर, खुशी अंदर है कि ये चीज, बाबा बाबा सुनता है, सुनता क्यों नहीं है। तो सुनाओगे तो सुनेगा ना। संबंध और स्नेह से बाबा को याद करना, ये याद और ये डबल लॉक का मैंने ये है कि जब हमारी विधि ये है कि अगर हमारी याद की स्टेज ठीक होगी तो माया कहां से आएगी, कहां से आएगी माया। मैंने कि नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर ही नेगेटिव थॉट्स हैं, वो वर्क नहीं करेंगे, ये लॉक लग गया, बस लॉक लग गया। मैंने कि अंदर है जो चीज आपके अंदर है, अगर वो आपकी वर्क करनी नहीं करेगी तो अपने आप खत्म हो जाएगी, ये सिद्धांत है। आपके अंदर गलत संस्कार है मगर उसको आप वचन और क्रम में आने ना दो, खत्म हो जाएंगे। मगर अगर वो फिर आते हैं आपके वचन और कर्म में तो स्ट्रांग हो जाएंगे। जो चीज अंदर मेरे है मगर मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वचन और कर्म में फिर आ जाता है तो स्ट्रांग हो रहा है, उसको ताकत मिल रही है, वो संस्कार मेरा जो है खत्म नहीं होगा। वो कौन करेगा उसको ठीक, कौन करेगा? ज्ञान में आने के बाद भी मेरे वचन और कर्म में अगर कोई ऐसी चीजें हैं, अशुद्धता है, नेगेटिविटी है, कौन ठीक करेगा उसको, कौन ठीक कैसे ठीक होगा? पहले तो समझ नहीं थी, अब तो समझ भी है, मुझे पता है कि ये रॉन्ग है, पहले तो पता ही नहीं था ये रॉन्ग है। रॉन्ग मेरे वचन और कर्म में आ रहा है तो वो तो स्ट्रांग होता जाएगा ना, फिर अगेन एंड अगेन वो फिर कर्म, फिर संकल्प पैदा करेगा, फिर संकल्प पैदा करेगा। जैसे स्थिति देखेगा, जैसे सिचुएशन देखेगा, थॉट्स आ जाएगा। आप देखो, आप ये प्रैक्टिकल करके देखो कि जैसे थॉट आप क्रिएट करोगे, थॉट वो एनवायरमेंट बनाते हैं, वृत्ति से वातावरण। आप अपने कमरे में रहते हैं, जिस बेड पे रहते हैं, अपने कमरे में रहते हैं, जो थॉट आपने वहां क्रिएट किए हुए हैं वहां जाने से वर्क करने लग जाएंगे। आप देखिए ऑटोमेटिकली, ये क्या चीज है, आपने वो एनवायरमेंट बनाया हुआ, अपने कमरे का, अपने बेड का एनवायरमेंट किसने बनाया हुआ है? माया और क्या चीज है, नेगेटिविटी है। कहीं कोई देखे ना देखे किसी ऐसी जगह पर आप थॉट क्रिएट करते हैं या कोई कर्म वचन कर्म करते हैं, उसी जगह पर जाने से वो फिर आएंगे आपके पास। क्यों आएंगे? क्योंकि आपने उसको फीड किया हुआ है, उस जगह को आपने। आप देखिए, एक छोटा सा मंदिर होता है, चार द्वारी बना देते हैं लोग, चार द्वारी बना करके एक मूर्ति किसी देवी देवता की लगा के रख देते हैं, पत्थर की मूर्ति, सारे लोग जाके कहने शुरू कर देते हैं देवी 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 देवी, वो देवी बन जाती है। लोगों को बद्र की मूर्ति शांति देने लग जाती है, मगर उस जगह में वो शांति का वाइब्रेशन क्रिएट किसने दिया? चैतन्य ने किया। चैतन्य जो है वो वाइब्रेशन देता है तो स्थान में फिर वाइब्रेशन बन जाता है। यहां पर इतने भाई बहने आते हैं और बैठ करके एक थॉट में बाबा ने मुरली में कहा कि शांति वन जैसी या ऐसी सभा दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। क्यों? लाखों की सभा हो सकती है दुनिया में, पर एक थॉट में वो बैठे होंगे वो नहीं हो सकता। यहां 10,000 20,000 एक थॉट में बैठते हैं, ऐसी सभा कहीं नहीं है। एक थॉट में बैठने से यहां का एनवायरमेंट में वाइब्रेशन बन गया हुआ है, इसलिए आप बाहर से आते हैं आपको आने से बड़ा अच्छा लगता है। आप कुछ भी ना करो, यहां पर कुछ भी ना करो, क्लासेस ना करो, योग में ना बैठो, पर आपकी मन की स्थिति बदल देगा, ये स्थान बदल देगा, क्योंकि स्थान में वो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन किसने दिया है? हम बच्चों ने दिया हुआ है। जहां आप रहते हैं, आपका कमरा है, आपका घर है, आप जहां कुछ भी है, उसमें आपके पॉजिटिव थॉट्स अगर होंगे तो एनवायरमेंट बदल देगा, आपको शक्ति देगा, आपके परिवार को भी देगा, बच्चों को भी देगा, सबको देगा, मगर आपके थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए। अगर आप वहां पर दूसरे थॉट क्रिएट करते हो तो उसका इफेक्ट वहां पर आएगा। कई भाई बहने हमारे सामने आते हैं, वो कहते हैं जी पता नहीं हमारा क्या हिसाब किताब है, लौकिक के साथ कटता ही नहीं है, वो बदलते ही नहीं है, वर्षों से बदलते ही नहीं है। फिर कहते हैं पता नहीं उनका पार्टी ऐसा है। बस ये नहीं है कि मैंने वहां पर उस स्थान को कितनी एनर्जी दी है, पॉजिटिव एनर्जी दी है, वो बताओ मुझे। आपने उनके लिए क्या थॉट क्रिएट किए हैं? अगर मैं वहां बैठ के यही थॉट क्रिएट करता हूं, नलायक, निकम्मे, किसी काम के नहीं, ज्ञान को नहीं मानते, ये क्या थॉट क्रिएट हो रहा है वहां पर? उनको एनर्जी मिल रही है? उनको भी ये कहना नहीं बाबा की है, आत्माएं हैं, है तो बाबा के, आज नहीं तो कल पहचानेंगे, जाएंगे कहां, हट्टी तो एक ही है, यही तो है, इनके साथ ही तो मेरा हिसाब किताब है, यही ये आज नहीं तो कल बाबा को जानने वाले हैं, ये विश्वास आपका काम करेगा और वो बाबा को समझ लेंगे, जानने लग जाएंगे। इसलिए हर चीज को समझना पड़ेगा, हर चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। योग किसे कहते हैं? क्या योग क्या चीज है? योग में सबसे पहली स्टेज जिसे याद और सेवा, दो चीजें मैंने बताया कि डबल लॉक है, मगर याद में ही सेवा समाई हुई है। सेवा को हम अलग ना समझे, सेवा का ये मैंने तो बड़ा इजी सा है, किसी को ज्ञान सुनाना, किसी को प्रदर्शनी सजाना, किसी को सात कोर्स सादिर का कोर्स कराना, कि ये करना, पैसे ही देना, संदेश देना जैसे गुब्बारों में दे रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है, पर असली सेवा क्या चीज है? ये सेवा तो कोई भी कर सकता है, कर रहे हैं, अच्छी बात है, असली सेवा क्या है? असली डबल लॉक वाली जो सेवा, वो सेवा क्या है? सबसे अच्छी सेवा है कि मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा संस्कार, मेरा फेस, ये कैसा है? ये है सच्ची सेवा। अगर आपका फेस खुश रहता है, आपका मुस्कुराते रहते हो, आपका फेस हर स्थिति और परिस्थिति में ठीक रहता है, सबसे बड़ी सेवा है, नंबर वन सेवा है, नंबर वन सेवा। मुझे वो सीन सामने आता है, अभ्यक्त बाप दादा आए थे या मधुबन में, कुछ समय पहले की बात है, गुलजार दादी के तन में बाबा ने मुरली चलाई, विदाई ले रहे थे बाबा, विदाई का गीत भी बज गया, बाबा ने फिर इशारा किया माइक वाले को, फिर बाबा ने कहा, एक बात बच्चों से कहनी है, मेरी बात मानोगे? मेरी बात मानोगे? आगे वाले हाथ उठाओ, पीछे वाले हाथ उठाओ, सबने कहा बाबा जरूर मानेंगे, आप कहो ना, कहता है अपनी शक्ल खुश रखो बस। देखिए, आप देखिए सार, देखिए सार, निराकार बाबा, अंदर आप देखिए बाबा का प्यार, देखिए इस एक शिक्षा के अंदर कितनी चीजें समाई हुई हैं, अपना फेस खुश रखो। मगर आप प्रैक्टिकली देखो कि फेस खुश रहता है, ऐसा नहीं कि फेस खुश मेरा, हमारा फेस स्माइलिंग बनता ही कभी नहीं है, नहीं, मगर क्या होता क्या है, हम किसी की तरफ देख के स्माइल करेंगे थोड़ी देर के बाद, नेचुरल क्या चीज है, नेचुरल क्या है, दिस इज आर्टिफिशियल है, मुस्कुराना आर्टिफिशियल हो गया है और ये नेचुरल हो गया है, क्या चीज, व्हाट इज दिस, हम क्यों नहीं मुस्कुरा सकते, हम खुश क्यों नहीं हो सकते, खुश क्यों नहीं हो सकते, खुश रहना कोई अपने फेस को, पर खुश के साथ अंदर मन की बात है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, आप बनावटी खुशी थोड़ी देर के लिए रख सकते हो, जब तक आपके मन के अंदर परिवर्तन नहीं होगा, आपके थॉट सिस्टम में चेंजेस नहीं आएगी, आप पॉजिटिव थॉट सोचोगे नहीं, ज्ञान का मनन नहीं करोगे, अच्छी बातें नहीं सोचोगे, तो आपका फेस स्माइल कैसे करेगा? अच्छे चिंतन से तो फेस बदलेगा ना आपका। और उसका मैं लास्ट में यह कहना चाहूंगा, जिसे डबल लॉक का एक तरीका, और एक तो यह मैंने आपको बताया याद का, ठीक विधि से बैठो, चेक करो इसको, कोई अभी अभी पहले हम लोग आए थे तब प्राइमरी स्कूल था, फिर मिडिल स्कूल बना, फिर हाई स्कूल बना, अभी यूनिवर्सिटी है, अब कोई किसको कुछ नहीं कहता, चाहे आप योग में नींद करते रहो, कोई नहीं कुछ कहेगा आपको, सोए रहो, हम लोग नहीं सो सकते थे, हमें सोना अलाउड ही नहीं था, हमारी टीचर बड़ी सख्त हुआ करती थी, हमारी एजुकेशन उस समय की हुई हुई है कि हमें बिल्कुल सीधा ही बैठना है, आंखें बंद करनी ही नहीं है, आधा घंटा हो घंटा हो, तीन घंटे भी हमें बिठाया गया योग में, सीधे आंखें खोल के बैठो, थ्री आवर्स, अपनी स्टेज बैठ लाइट होके बैठ जाओ बस ऐसे वैसे बैठ। स्टेज ऑफ डिटैचमेंट जिसे कहते हैं, आत्म बाबा भी कहता आत्मक स्थिति में बैठ करके फिर बाबा को याद करो। आत्मक स्थिति किसे कहते हैं? आत्म अनुभूति। आत्म अनुभूति क्या है? आत्म अनुभूति किसे कहते हैं? ऐसे बैठे हुए हैं, ये शरीर अलग है। एंजॉय एंजॉय, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, गुड फीलिंग, जैसे मैं अलग हूं, ये शरीर है। इसका बहुत अभ्यास करना पड़ता। और डबल लॉक अगर आपका दूसरा सहज तरीका है डबल लॉक का, बाबा ने मुरली में क्या कहा है? बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे कंबाइंड समझो। क्या मायना इसका? मुरली आपने सुनी है, कंबाइंड का क्या मायना होता है? बाबा मेरे साथ है। आप दो मिनट बैठ के ये अनुभव करो, दो मिनट बैठ के अनुभव करो, बाबा मेरे साथ है। ऐसे देखो, बाबा मेरे साथ, बाबा है मेरे, मैं बाबा कंबाइंड हूं। कंबाइंड का मायना क्या? जैसे एक शक्तिशाली स्टेज का अनुभव हो रहा है, जैसे बाबा मेरे साथ है। गुलजार दादी के तन में जब बाबा आता है तो हमें कैसे फील होता है? बाबा दृष्टि देता है तो कैसे फील होता है? बाबा आ गया। सारे 20,000-25,000 की सभा सब ऐसे बैठे हुए, डेड साइलेंस। बाबा दृष्टि दे रहा है, कोई आवाज नहीं, सन्नाटा है। सबको क्या अनुभव हो रहा है? शांति का, शक्ति का। बाबा 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 कहते मेरे कंबाइंड समझो का क्या मायना? ये पॉसिबल नहीं है कि बाबा को मैं अनुभव करूं कि बाबा मेरे साथ है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। है पॉसिबल? जो कहते पॉसिबल हाथ खड़ा करो। बाबा मेरे साथ है, बाबा। दिस इज डबल लॉक। अगर ये स्टेज की जितनी स्थिति अगर बढ़ती जाएगी, इस अनुभूति में जितना समय हम बैठेंगे, हमारे कोई संस्कार काम करेंगे नहीं। पुराने अंदर चाहे कुछ भी है, कुछ भी है, अंदर जो कुछ भी बढ़ा हुआ है, विकर्म विनाश, इसको बीज रूप की स्थिति भी कह सकते हो, जो ज्वाला स्वरूप की स्थिति भी कह सकते हो, जो हमारे पास्ट की नेगेटिविटी है वो नहीं काम करेगी। अंदर चाहे है हमारे, पर वो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दिस इज डबल लॉक। सहज विधि जो डबल लॉक की है, जब बैठो बाबा मेरे साथ है, बाबा बाबा आपका है। जब मेरा बाबा है तो मैं बाबा के साथ नहीं बैठ सकता, मैं कंबाइंड स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। क्या बाबा ने जो कहा है वो बाबा का जो अनुभव हम नहीं आत्मा कर सकते? किसके लिए बाबा ने कहा है कि बच्चे कंबाइंड समझो? क्या मेरे लिए नहीं कहा है बाबा ने? क्या बात है कि मैं बाबा को आह्वान नहीं कर सकता? बाबा आओ, बाबा मैं बाबा को कहूंगा, बाबा नहीं आएगा? क्या चीज है जो बाबा को मैं बुलाऊं और बाबा आए नहीं? हो सकता है? क्या चीज है ये? इसमें काम करती है सच्चाई। बाबा कहाँ आएगा, किसके पास आएगा? सच्चाई, निस्वार्थ, लगाव झुकाव नहीं, कुटिलता नहीं। आत्मा के अंदर कोई ऐसी चीजें हैं जो बाबा नहीं आता। फिर भक्ति में भी हम कहा करते थे, मन को मंदिर बनाओ, भगवान वास करेगा। देखो क्या चीज है ये, सच्चाई और सफाई। बाबा को क्या चाहिए? बाबा को और कुछ नहीं, बाबा तो दाता है। आप भी देखो कि आपको लौकिक बच्चे जिनके हैं वो क्या, उनकी क्या क्वालिटी आपको अच्छी लगती है, सच्चाई आज्ञाकारी। बस मुझे अपने बच्चों से ये क्वालिटी चाहिए, तो बाबा को भी, तो हम बच्चे हैं ना, फिर हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारा बाप हमारे से एक्सपेक्ट करता है। सच्चे बनो, तो हम क्यों गलत काम करें, क्यों झूठ बोलें, क्यों मन को गंदा बनाए। गलत थॉट क्रिएट करने से तो मन ठीक नहीं होता है ना, फिर बाबा कैसे आएगा फिर। और बाबा आएगा तो सब चीजें कैसे ठीक हो जाएंगी, देखो डबल लॉक, मैं और बाबा कंबाइंड हैं, इसका अनुभव बढ़ाओ। ये इसके लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं, आपको फ्री होना है थोड़ी देर के लिए। अंदर संकल्प रखना है कि मैंने बाबा के साथ बैठना है, मैंने अकेले नहीं बैठना है, मैंने कुछ समय बाबा के साथ बैठना है। ये भी तो योग और सेवा दोनों ही है, याद और सेवा कंबाइंड हो जाएगी, आप देखना यही सेवा भी है। अगर आप इस स्थिति का, जितनी अपनी स्थिति को बढ़ाते जाओगे, आपके थॉट्स के द्वारा इतनी सेवा होगी, इतनी सेवा होगी, जिसे बाबा कहता है मनसा सेवा। मेरे थॉट्स में जितनी प्योरिटी बढ़ेगी उतना वातावरण में प्योरिटी बढ़ती चली जाएगी, और वही सतयुगी सृष्टि का निर्माण है जो बाबा हम बच्चों से करवा रहा है। ये सतयुग बाबा ला रहा है, सतयुग आ रहा है, क्योंकि हमारे थॉट्स प्योर होते जा रहे हैं, डिवाइन होते जा रहे हैं, हम आत्माएं सतयुगी बन रही हैं। सतयुग आ रहा है, और सतयुग कैसे आएगा। ये क्रिएशन है बाबा की, डिवाइन क्रिएशन, हमारा मनोपरिवर्तन, मन को बदलना है। यहां पर ड्यूअल पर्सनैलिटी नहीं चलेगी, ब्राह्मण बच्चों में ड्यूअल पर्सनैलिटी नहीं चलेगी। हम जो हैं सच्चे हैं, बाबा की हैं, क्यों गलत करें, किसके लिए करें, हम तो वापस जा रहे हैं, नहीं तो रास्ते में रुकना पड़ेगा। फिर पहले वाला ही ठीक करना है, नया क्यों बनाए गलत। ब्राह्मण मैं ना, ब्राह्मण मैं ना बाबा का बच्चा, ब्राह्मण फिर फरिश्ता फिर देवता, फरिश्ता मैं ना लाइट, बोझ खत्म हुआ फरिश्ता, अंदर की नेगेटिविटी खत्म हुई तो फरिश्ता कहेंगे ना, देवता फिर डिवाइन क्वालिटी आ जाएंगी। इसलिए इस अनुभव को हर कोई कर सकता है, मैं आपको बताऊं, नया हो पुराना हो कुछ नहीं, मगर इसके लिए फ्री होना पड़ता है थोड़ा। वेयर देर इज विल देर इज वे, इसका अगर किसी को रस बैठ जाएगा तो ऐसी प्राप्ति कहीं नहीं है दुनिया में, कहीं नहीं। बाबा के साथ के बैठने के अनुभव में सब कुछ, में सब कुछ इसमें है, बाबा साथ है, सब कुछ है। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम।